आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र महारानी अंबिका के बेटे थे। वो महर्षि वेदव्यास के नियोग से पैदा हुए थे। ये नियोग क्या होता है? मनुस्मृति में नियोग प्रथा के बारे में बताया गया है। नियोग विधि का तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई पुरुष संतान पैदा करने लायक न हो और उसे अपने लिए एक संतान की इच्छा हो, या किसी स्त्री के पति की बिन संतान मृत्यु हो जाए और उस स्त्री को एक संतान की जरूरत हो। तब किसी ऐसे पुरुष के साथ जो चाल चरित्र में अच्छा हो, समाज में जिसका सम्मान हो, जो नियोग विधि की जरूरत को समझता हो और उसका सम्मान करता हो, उसके साथ स्त्री संबंध बनाकर एक संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन पति के जीवित होने पर नियोग विधि के लिए पति की अनुमति जरूरी है। नियोग प्रथा में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस संबंध का उद्देश्य सिर्फ एक संतान पैदा करना है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महारानी अंबिका नियोग के समय बहुत असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वजह से जो गर्भ धारण हुआ, वो बच्चा गर्भ में ही अंधा हो गया। इसीलिए महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। महारानी अंबिका के पति राजा विचित्र वीर को तपेदिक, जिसे टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, हो गया था, जिससे उनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कुरुवंश को आगे चलाने वाला कोई पैदा नहीं हो पाया था। ऐसे में राजमाता सत्यवती ने अपने पहले बेटे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कुरुवंश की धारा को चलाए रखने के लिए जो भी उपाय हो सके करने का आदेश दिया था। सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नियोग से महारानी अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया था। कहते हैं, कर्म की गति ऐसी है कि कर्म चाहे जैसे भी हो, कर्म चक्र सही समय पर ही उसका फल देता है। अहम बात यह है कि देर सवेर ही सही, पर कर्म का फल मिलता जरूर है। राजमाता सत्यवती अपने दोनों जवान बेटों को खो चुकी थी, इसीलिए वे अपने पहले बेटे कृष्ण द्वैपायन, जो कि उनके विवाह से पहले जन्मा था और कुरुवंशी नहीं था, उसी से कुरुवंश की धारा को बनाए रखने के उपाय करने को कहती हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नियोग से महारानी अंबिका एक बेटे को जन्म देती हैं। लेकिन वो बेटा जन्म से ही अंधा होता है। वही बेटा आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र हुआ। अब इस दुनिया में जो भी होता है ना, वो बिना वजह नहीं होता। आज की घटना किसी न किसी पिछली घटना का नतीजा है और साथ ही आगे होने वाली किसी घटना का संकेत भी। इसी के चलते अभिशाप हो या वरदान, उसका फल हमें जन्मों जन्मों तक, जब तक कि कर्म फल शून्य न हो जाए, भोगना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में एक दुष्ट राजा थे, जिन्होंने एक हंस को अपने तीर से अंधा कर दिया था। हंस के बच्चे उस समय अपने पिता हंस के साथ हंसी खुशी पानी में खेल रहे थे। तीर के दर्द से तड़प कर मरते समय हंस ने दुष्ट राजा को श्राप दिया था। श्राप की वजह से अगले जन्म में वही राजा धृतराष्ट्र के रूप में अंधे पैदा हुए थे। उसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र अपने 100 बेटों के चेहरे कभी नहीं देख पाए और बेटों की मृत्यु खुद उनके जीवित रहते हुए ही हुई थी। हस्तिनापुर के राजवंश की परंपरा के अनुसार धृतराष्ट्र की शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा भीष्म की कड़ी देखरेख में पांडु और विदुर के साथ ही हुई थी। दरअसल धृतराष्ट्र बचपन से ही बहुत बलवान थे। धृतराष्ट्र बल विधा के महारथी कहलाते थे। वो भीम से भी ज्यादा बलवान थे। उनमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन अंधे होने की वजह से उन्हें हस्तिनापुर का राजा न बनाकर उनके बदले में पांडु को सिंहासन सौंप दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से पांडु की मृत्यु हो जाती है, तब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा गया था। आंखें न होने पर भी धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन एक कुशल शासक की तरह चलाया था। समय आने पर धृतराष्ट्र का विवाह भीष्म ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया। विवाह से पहले राजकुमारी गांधारी नहीं जानती थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। विवाह के बाद जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वो आजीवन उसे बांधी रहीं। गांधारी की जन्मपत्री में भी एक दोष था, जिसके उपाय के लिए एक महात्मा ने गांधार नरेश को जो बताया था उसके अनुसार गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से कराया गया था। उसके बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई थी, लेकिन धृतराष्ट्र से विवाह के समय इस बात को छुपाया गया था। आगे चलकर जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर गांधार नरेश सुबाला को उनके 100 बेटों सहित कारावास में डाल दिया था और सबको बहुत यातनाएं दी थी। महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही आगे चलकर महाराज धृतराष्ट्र एवं महारानी गांधारी के 100 बेटे हुए और एक बेटी भी हुई थी। उनमें से धृतराष्ट्र अपने बड़े बेटे दुर्योधन को ज्यादा चाहते थे। बेटे के मुंह में वो इतने ज्यादा लिपट गए थे कि सही गलत का फैसला तक नहीं कर पाते थे, इसीलिए वे भूल पर भूल किए जाते थे और दुर्योधन को गलत काम करने से भी नहीं रोक पाते थे। इससे दुर्योधन को भी हमेशा गलत करने का बढ़ावा मिलता गया था। इसमें कोई शक नहीं कि धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से ही कौरव वंश का अंत हुआ। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर न बैठे बल्कि दुर्योधन बैठे, इसीलिए वो हमेशा युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों की उपेक्षा किया करते थे। पांडव जानते थे कि तातश्री उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन को भी सारे गलत कामों के लिए बढ़ावा पिता से ही मिल रहा था, इसीलिए वनवास और अज्ञातवास काटकर लौटने के बाद जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। भाइयों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत अचानक तो नहीं पनप सकती। यदि परिवार के बड़े बूढ़े ऐसा न चाहें तो महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन को बड़ी बेरहमी से मारा था, इसीलिए धृतराष्ट्र भी भीम को उसी तरह मारना चाहते थे। वो मौके की तलाश में थे जब भीम उनके सामने हो और वो मन में धधक रही बदले की ज्वाला को शांत कर सके। युद्ध समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तातश्री धृतराष्ट्र को प्रणाम करने पहुंचे। सबने प्रणाम करते हुए उन्हें अपना नाम बताया। धृतराष्ट्र ने सबको आशीर्वाद दिया और अपनी इच्छा बताई कि वो खासकर भीम को गले लगाना चाहते हैं। उनके मन की बात वासुदेव श्री कृष्ण से कैसे छुपी रह सकती थी? श्री कृष्ण तो पहले से ही उसकी व्यवस्था कर चुके थे। श्री कृष्ण ने तुरंत भीम की जगह भीम की लोहे से बनी मूर्ति को आगे कर दिया। धृतराष्ट्र ने भीम समझकर उसकी लोहे की मूर्ति को अपने बाहों में जकड़ लिया और जकड़ते ही चले गए। देखते ही देखते उन्होंने उस लोहे की मूर्ति को अपनी बाजुओं की ताकत से चूर चूर कर दिया था। बहुत ज्यादा बल प्रयोग कर लेने की वजह से उनके मुंह से खून आ गया था। धृतराष्ट्र धरती पर बैठकर चीखे मार मार कर रोने लग पड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने भीम को मार डाला है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीम अभी जिंदा है, आपने जिसे मारा है वो भीम की मूर्ति थी। इसके बाद महाराज धृतराष्ट्र जीवन भर इस अपमान की आग में झुलसते रहे। आखिरी समय में धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ महल में ही रहते थे। ऐसे में भीम की कड़वी बातें धृतराष्ट्र को हमेशा चुभती रहीं। वो बड़े दुखी रहने लगे थे, खाना पीना भी लगभग छोड़ चुके थे। कई वर्ष ऐसे ही बीते। धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य पैदा होने लगा था। एक दिन वो गांधारी को साथ लेकर महल छोड़कर वन को चले गए।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।